Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
दोनों ने कहा कि अरे तुम कौन हो भाई, हम दो हैं, तुम अकेले लड़ रहे बराबर इतने दो गया। बोले हमें तो लोग विष्णु भगवान कहते हैं। अच्छा तो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान हम यही मांगे कि तुम हमारे हाथ से मर जाओ। तो दोनों हंसने लगे, हम क्या समझे कि तुम ये वरदान मांग लोगे। लेकिन खैर मांग लिया तो मांग लिया, अब तुम ऐसा करो कि जहां कहीं पानी की बूंद न हो वहां हमें मारो। और उस समय पृथ्वी थी नहीं, सब में जल ही जल था। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो वे विराट रूप लेकर के और बैठ गए पद्मासन से। बोले देख आओ, अच्छा कहीं पानी मिले तो हमें बताना। अब चरणों पे दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते आए, बोले महाराज कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। बोले तो मरो। तो अपना अपना सिर रख दिया, सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो कथा का ही आशय है कि यही मधु हैं और कैटव हैं, दो दैत्य हैं। मधु माने मीठा होता है, राग है, और कैटव माने कीटवत भाति इति कीटवा, और भाव अर्थ में कैटव बन जाएगा। एक दीमक होती है क्या, वो बड़े लकड़ी से छेद देती है मोटे, और बिल्कुल छोटा कीला होता है। ऐसे ही जैसे वो छेद कर देता है, ऐसे दिल दिमाग में चिंतन करते करते द्वेष भी छेद कर देता है। इसलिए इसका नाम द्वेष, दुगणतम विस्मित द्वेषा, दूना जार है। और मधु माने मीठा मीठा, मधु बड़ा राग होता है। दुगुणतम विस्मृति द्वेषा, दूना जहर। तो दूना जहर कैसा, दूना जहर उधर से भी इधर से भी। जैसे दूल्हा बनता ना, दुल्हा द्वाभ्याम लभ्यते आदर इति दुल्हा, दोनों तरफ से आदर मिलता है ना उसको, जनाती से भी बराती से भी, इसलिए उसका नाम दूल्हा रखा गया, दुल्हा। तो यही द्वेष है। ये जो द्वेष होता है वो दिल दिमाग को काटता रहता, छेदता रहता। तो ये मधु कैटव है, ये द्वेष है, राग है और द्वेष है। और कान के मैल से पैदा हुए, कान से नहीं, कान तो सुनने सुनता है जैसे आप लोग सुन रहे हैं श्रुति, लेकिन कान का एक मैल होता है। कान का मैल नहीं, आप लोग समझते हो, कच्चे कान कहलाते ना, उनके कान बड़े कच्चे हैं, जिसकी बात सुन लो उसी मान लो। किसी ने सुना दिया कि तुमसे वो लोग ऐसे कह रहे थे, और उसी को मान लिया, उसी पर राग द्वेष कर बैठे। इसलिए कान का मैल बताया गया। एक बार मैं एक जगह बैठा था, हमारे पास सज्जन बैठे थे, सत्संग हो रहा था बड़े मजे से, और बीच में उठे और घर गए, और घर से लौट के आए तो लाल लाल आंखें, ओंठ फरके, बड़ा क्रोध में। तो हमने कि ये रोग कहां से ले आए। बोले मैं घर गया था तो हमारी पत्नी और बेटी हमारी निंदा कर रही थी, तो हमने कि जब तुम चले गए तो तुम्हें देख के भी निंदा होती है। बोले हम चले कहां गए, हम तो किवाड़ों से छिप करके सुनते रहे कि देखें क्या हो रहा है। अब बताइए, आप लोग तो ऐसे नहीं सुनते ना, क्या जरूरत थी किवाड़ों से दरवाजे पर खड़े होकर सुने। अगर निंदा करेगा तो क्रोध आएगा, स्तुति करेगा तो अभिमान बढ़ेगा। अरे कहें कहें, दुनिया है तो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो चुपके से सुनना, ये कान लगाए के किसी की निंदा सुनना, किसी की स्तुति सुनना चुपके से, ये कान का मैल कहलाता। अब कभी मत सुनना, घरे कुछ होने दो, उसमें क्या है अपनी, तुम्हें क्या लेना देना। तो रोग पाल लाए, क्रोध आ गया बड़ा जोर से। तो ये कान के मैल से ये राग और द्वेष पैदा होते हैं और फिर जहां पैदा होते हैं वहीं से लड़ते हैं, क्यों अंतःकरण है ना। अंतःकरण ब्रह्मा जी के चार मुंह बताए गए, ये चार मुंह मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। तो जहां अंतःकरण से मन से ही तो राग द्वेष पैदा हुए वहीं लड़ते हैं। देखो मजे की बात, जहां पैदा हुए वहीं लड़ते हैं और लड़ते क्या हैं? ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा है विधान, विधि विधि विधानम विधिरेव विधानम विधत्ते, ऐसे कर लो, विदधात इति वेधा, जो कानून बनावे जो नियम बनावे उसी को ब्रह्मा कहते हैं। विधि है, विधि माने इस विधि से ये काम करो, ये विधि से ये काम करो, उसी को ब्रह्मा कहते हैं। तो एक कानून को खा जाते हैं राग और द्वेष। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हमारे महाराज जी के शिष्य थे, वहां वृंदावन में रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक दिन एक मुकदमा को मैंने अपने साथी को दे दिया, कहा कि इसमें मेरे दामाद को जेल होने वाली है, तो ये और ये फैसला हम नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से नहीं हो पाएगा। तब उनके समझ में आया कि विधि को खाने वाला, कानून को खाने वाला होता है राग द्वेष। अब वो दामाद है इसलिए राग है उसके प्रति, कानून नहीं कर सकते। कानून को खा जाता है राग और द्वेष, ऐसी चीज है कि संविधान सोचता नहीं, भैया भतीजावाद आ जाता। तो ये ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े राग और द्वेष, माने विधि विधान को खाने के लिए। तब लड़ाई होने लगी, कहां? जहां से पैदा हुए, जिस अंतःकरण से पैदा हुए उसी से लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते 5000 वर्ष बीत गए। पुराणे संख्या अनंतत्वात्, पुराणों में संख्या अनंत के रूप आती है। 5 माने 5000 माने प्रपंच, 5 होता ना, तो 5 में जब प्रा उपसर्ग लग जाता है तो उपसर्गेण धातुर्थो बलादन्य त्रनीयते, जबरदस्ती उपसर्ग अर्थ बदल देता है। तो प्रपंच माने 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5-5 करोगे तो 5 को पंच, 5 में 5 को गुणा कर दे तो 5 25 हो गया, इसी को प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंच यावत, जब तक प्रपंच रहता है तब तक राग द्वेष रहता है। ये बड़ा टिकाऊ चीज है। कितना सुंदर अर्थ दिया देखो, कि जब भगवान ने कहा कि भाई मरो मेरे हाथ से, तो राग द्वेष कैसे मरता है? तो या तो भगवान के चरणों पर और सिर धरा सुदर्शन से काट दिया, माने आत्मदर्शन, स्वदर्शन, आत्मदर्शन से राग द्वेष कटता है भगवान के चरणों में। प्रकृति से राग हटकर प्रकृति के मालिक परमात्मा में अनुराग जुड़ जाए, ये बहुत जरूरी, मनुष्य मात्र का लक्ष्य है ये। ये लक्ष्य रोज दोहरा देते हैं, बोलो, प्रकृति से राग हटकर प्रकृति के मालिक भगवान से अनुराग जुड़ जाए, ये मनुष्य का लक्ष्य है, याद रखो, मनुष्य मात्र का लक्ष्य, इसीलिए उसका जन्म ही हुआ है। ये चेदवेदी तत्सत्यमस्ति न चेदवेदीन महति विनष्टि, यदि ये बात लक्ष्य पूरा यहां हो गया तो मनुष्य का जन्म सफल है, और नहीं तो जन्म ही बेकार, चूहा बिल्ली कुत्ता हाथी घोड़ा होता। मनुष्य के जन्म की बात यह है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये राग द्वेष के कारण व्यक्ति जीवन भर परमात्मा ही एक्टर है, ये बात नहीं समझ पाता। परमात्मा ही सब में है और वो ही सब कुछ कर रहा है। अब वो जब ये बात समझ में आ रहा थी, अस प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी, सबके भीतर विराजमान ऐसा प्रभु है, ऐसा सर्वसमर्थ भगवान है। तो ये अहम भी जानामी, विविक्त रूप, जो विविध विविध रूप हैं उसको मैं जानता हूं, चिद स्वरूप हूं। न वेत्तासी और न चास्ति वेत्ता। अब ये बड़ा मजे की बात है कि इस रूप में इस स्वभाव को कोई नहीं जान पाता। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे मनुष्य रूप को तो तुम जानते हो और सब जानते हैं, लेकिन मेरे अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझ पाते हो। और गीता का 13वें अध्याय में जहां से आया अनादिमत पर ब्रह्म सतन्न साध उच्चते न सद न असद, ये यहां से लेकर के और ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमसा परस्तात वहां तक बहुत सुंदर गीता के 13वें अध्याय का ये मंत्र है। ये बहुत मार्मिक मंत्र है, इसमें भगवान का शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया। न वेत्तासी न चास्ति वेत्ता। कोई दुनिया में हमें इस स्वरूप को इसलिए नहीं जानता कि जो एक्टर लोग हैं, माने जो जौन पार्ट कर रहा है उसी को वो मान लेता है। जैसे अरुण गोविल जी ने राम का पार्ट किया तो अरुण गोविल को राम के रूप में सब लोग देखने लगे। ये नहीं सोचा वो तो पाठ कर रहा है, वो है थोड़ी। इसी प्रकार से पत्नी का, पति का, माता का, पिता का, बेटा का, बेटी का पाठ जो हो रहा है तो बेटा बेटी का पाठ है ना कि बेटा बेटी है, तो पाठ है। उतनी देर जितनी देर पाठ करता है उतनी देर वो करता है, फिर तो अपने स्वरूप में ही है। तो जिस समय वो पाठ कर रहा है, ये नाटक की 3 विशेषताएं होती हैं। जो पाठ करता है वो वह होता नहीं है, अब पाठ करता है। ये बात बहुत मुश्किल में समझ में आएगी। ये अरुण गोविल जी राम का पाठ करते तो राम हो थोड़ी गए, हैं तो अरुण गोविल ही, लेकिन व्यक्ति उनको राम के रूप में देखता है। टीवी में जब रामायण निकलती थी तो मैंने देखा उस टीवी पर फूल की माला पहनाते थे और राम जी जब उसमें निकलने तो हाथ जोड़ते थे। क्यों? वो भगवान है राम। तो ठीक है, जिस समय वो पाठ कर रहा है उस समय वो राम है, लेकिन वास्तव में उस समय भी उससे पूछो तो वो राम नहीं है। ये बात ध्यान देना चाहिए। एक उद्देश्य ये होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आपके सब क्लेश कट जाए। ये पाठ हो रहा है, किसी के प्रति क्या राग द्वेष, तो पाठ है, अपना अपना पाठ कर रहा है। कोई पति का, कोई पत्नी का, कोई माता का, कोई पिता का, कोई बेटा का, कोई बेटी का पाठ है ना, तो अपना अपना पाठ निभा रहे हैं। दूसरी बात एक बहुत अच्छी है कि नाटक की विशेषता होती, पहले लिख लिया जाता है तब बोला जाता है, तब खेला जाता है। तो पहले लिख लिया तब खेला, तो इसका मतलब उसको मालूम है। अब लक्ष्मण शक्ति लगी और अब उसको मालूम राम को है कि हनुमान जी जाएंगे, सजीवनी लाएंगे, लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे, फिर मेघनाथ को, ये मालूम सब है। लेकिन सब मालूम होने पर भी आज जितना पाठ खेलना उतने खेलेगा, आज रोना है तो रो लिया। आज जब उसको मालूम है वो तो सब पूरा रामायण भर याद होती है, तो उसको मालूम है कि अभी मेघनाथ मारा जाएगा तो फिर क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं, आज जितना पाठ है उतने करना है। ये देखो, ये विशेषता होती है। और तीसरी विशेषता ये है कि उसके द्वारा एक समाज को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ये 3 बातें अगर नाटक में समझ ले तो ना अटक, उसमें अटको नहीं, खेलो खूब, ना अटक अकर श्रमण दीर्घा, दीर्घ हो गया, ना अटक उसमें अटको नहीं, भटको नहीं और खेलो खूब। तो इसी प्रकार से जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्रेम से करो, बड़े प्रेम से मिलो। कौन एक्टर क्या पाठ कर रहा है वो जो कोई पाठ कर रहा है वो सब मेरे ही प्रभु तो हैं। जब वही सब में अक्षर बना हुआ है तो उसके अलावा तो कोई और है नहीं, तो वही सब में है। जब ये बात समझ में आ जाएगी, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर सुरमुनि नर प्रसन्नता ऊपर, उसमें सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? उसे तो हमेशा शिव है, शुभ है, अशुभ कहीं है ही नहीं, दुख की कहीं रेखा आएगी नहीं। तो दुख की रेखा नहीं आएगी तब तो उसको कोई नहीं जान पाता है, इस रूप में कोई नहीं समझ पाता। एक जगह नाटक हो रहा था तो लक्ष्मण जी ने, जो लक्ष्मण बना था उसने मेघनाथ जो बना था उसके बाण मारा तो मर गया, सिर कट के गिर गया। तो सब चिल्लाने लगे, अरे राम राम राम, बड़ा बुरा हुआ। देखो तो मेघनाथ जो बना था उसकी मां भी वहीं बैठी थी, वो हंसने लगी। सबने कहा अरे तुम्हारा लड़का मर गया और तुम हंस रही, भाई लड़का तो हमारा भीतर है, लेकिन पाठ उसने कितना बढ़िया किया कि सचमुच मालूम पड़ने लगा, ये हमको तारीफ लगी। तो वास्तव में पाठ तो ऐसा होना चाहिए जो जगत में ये मालूम पड़े कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ये पाठ की विशेषता है। पाठ ही कौन बात का जो अगर लोगों ने, दर्शकों ने वो नहीं समझ पाया। इसीलिए कहा बड़े प्रेम से मिलना सीखो दुनिया में इंसान से। जब परमात्मा ही सब में एक्टर है तो सबके प्रति प्रेम भाव से, सद्भाव से, सम्मान से सबका आदर करो, सबको प्रेम से रखो। कि थोड़ी देर का पाठ है, पाठ खत्म हो जाएगा, वो भी सच्चिदानंद हम भी सच्चिदानंद, अभी तो पाठ कर रहे हैं। जैसे भगवान राम आए और पाठ किया बचपन से लेकर के और अंत तक ये पाठ किया, अरे इसमें कितने बार अनुकूलताएं आई, कितने बार प्रतिकूलताएं आई, यही दिखाने के लिए अवतार लिया जाता है, नाटक किया जाता है कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो ये जीवन का खेल है। कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि मग में बिखरे शूल न हो। ये देखो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं है तब तो फिर उससे पता का चलेगा ये नाव चला लेता है बढ़िया। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि मग में बिखरे शूल न हो। मग में जब कांटे बिखरे हुए और फिर वो चला जाए तब विशेषता है, कुशलता तो तब है ना। अरे तो जीवन का खेल है, नदी के इस पार आएगा तो अनुकूल है, उस पार चलेगा तो प्रतिकूल। एक ने कह दिया उधर तुम्हें शंकर जी का दर्शन हो जाएगा, तो बड़ी प्रसन्नता की बात, नाव पे बैठे और उस सज्जन उस पार चले गए। उस पार पूछा कि भैया पार कौन है, लोगों ने कहा अरे नाव पे बैठे रहो, उधर निकल जाओ, उधर पार है। इधर आ गए नाव के बड़े मजे से, और वहां फिर पूछा क्यों भैया पार कौन है, बोले अरे तुम गलत आ गए, उधर उस पार है। फिर नाव पे बैठे, फिर उस पार चले गए। तो मलाह ने पूछा कि तुम दो तीन बार इधर गए फिर उधर गए, तुम क्या चाहते क्या? बोले भैया मैं तो पार जाना चाहता हूं, मतलब यही पार है, बैठ जा। तो जहां तुम बैठे वही पार है, लेकिन इधर का व्यक्ति उधर को पार समझ रहा, उधर का व्यक्ति इधर को पार समझ रहा। ठीक इसी प्रकार से जो चीज तुम्हें अनुकूल है वो दूसरे को प्रतिकूल पड़ रही है, और दूसरे को जो प्रतिकूल है वो तुम्हारे लिए अनुकूल पड़ रही है। यही तो संसार का शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित, ये वासना की नदी है और इस संसार की नदी में दो कूल हैं भाई, जो तुम्हारी ओर है वो अनुकूल है, दूसरी की ओर प्रतिकूल है। तो उधर वाला पार इधर को भी समझ रहा है ना। हमने देखा उधर काशी के उस तरफ गंगा पार वाले जो लोग थे ना, हमारे लोग उनको इधर पार बताते थे, वो इधर के उधर का है पार है। तो पार कौन हुआ? पर पार जो तुम हो वही पार है। तो असल में यही जीवन का खेल है, राग द्वेष की निवृत्ति करके चिदानंद स्वरूप, सदा अपने को चिदानंद स्वरूप समझना चाहिए। तो मैं तो सच्चिदानंद हूँ, अपरमेय हूँ, अनादि अनंत हूँ, अखंड और एक रस हूँ, सदा एक रस रहने वाला। अगर किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष कर बैठोगे तो जीवन दुखी हो जाएगा। और राग द्वेष को अगर ये समझ लोगे कि भगवान के चरणों में ये तो स्वदर्शन आत्मदर्शन से कट गए, किसके प्रति राग करोगे, किसके प्रति द्वेष करोगे जब सब पाठ हो रहा है? वही पाठ करने वाला सब में दिख रहा है, तो कौन है उसी को बताया गीता के अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्नास दुच्यते से लेकर के ज्योतिषाम भी। अब भगवान कहते एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते, जो कोई इस बात को समझ जाएगा कि ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विश्चितम, ज्ञान और गेय ये तत्व जो त्रिपुटी है ये सब हमी में है, हमी है, हमी ज्ञान है, हमी गेय है, हमी ज्ञाता है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी एतद भक्तः, वही भक्त है। और वो जो भक्त जान जाएगा एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा मतलब मुझमें हो जाएगा। सुई जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो वो तुम्हें जान करके तुम ही मैं हो जाएगा। तो जब अलग नहीं हो पाएगा तो फिर कौन बताएगा? बताने कोई आना चाहिए ना, कोई न कोई आवे और बताए आए कि भाई उस रास्ते से न जाना। लेकिन जानत तुम ही हो जाई, वो जानने से वही मैं हो जाता है। तो जब वो मैं हो जाता है, तन्मय हो जाएगा, तो इसी को कहा गया मद भावायोपपद्यते। ब्रह्म बहुत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, फिर वो शोक दूर हो जाता है, कुछ चाहता ही नहीं, न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष है न किसी से कांक्षा है। ये बात समझने की रोज प्रैक्टिकल की है, आप इस पर ध्यान दो कि ये जो राग द्वेष आप करते हो इस बात को समझते नहीं हो कि सब में परमात्मा ही अक्सर बन रहा है, वही खेल कर रहा है। और वो खेल कर रहा है तो हम सबसे प्रेम से रहें, क्योंकि वो जो भगवान ही है वही अक्सर बना हुआ है, तो भाई हम क्यों किसी से द्वेष करें? और हो जाता है, होता इसलिए है कि सबके प्रति सद्भावना नहीं और अपने को सदा चिदानंद रूप समझते नहीं कि मैं तो आनंद रूप हूं, मेरे आनंद में कोई बाधा न अगर होती है। इंद्रिय सिंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो विवस्तौ तयोर नभस मांग अच्छे तौ यस्य परिपंथरो, तुम्हारे लक्ष्य को काटने के लिए है ये। अगर लक्ष्य को पहुंचना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इनसे राग द्वेष से दूर रहो। और राग द्वेष से दूर तभी रह सकते हो जब आप सब में परमात्मा का दर्शन करो, आत्मा का दर्शन करो। ये मालूम पड़े कि ये सब प्रतिबिंब है मेरा, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सब का सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप से अलग नहीं है। असत्य के तुम ही आश्रय हो सदा सत, असत के तुम्ही असत के तुम्ही आश्रय हो सदा सत, असत के तुम्ही तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, तुम्ही में पिलाते हो जो सो पिए जा रहा हूँ, पिलाते तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे बोलो कृष्ण भगवान की जय।
हरिओम, पूज्य महाराज जी के चरण में प्रणाम। आज 29 जनवरी मंगलवार, महाराज जी से आशीर्वाद प्रसाद ग्रहण करें, अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।